ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। रसुआ गढ़ी क्षेत्र में बीती रात आई बाढ़ में लापता हुए लोगों में से मिले 7 लोगों के शव, 55 का किया गया उद्धार। बाढ़ से मितेरे पुल बहने से रसुआ नाका से टूटा नेपाल चीन सड़क संपर्क। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलगत अवलोकन। बाढ़ और भूस्खलन में फंसे लोगों का उद्धार और राहत को प्रभावी बनाने की ओर सांसदों ने सरकार का कराया ध्यानाकर्षण। और भारतीय राज्य बिहार के पूर्णिया जिले के टेटगामा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। अब समाचार विस्तार से। नेपाल चीन सीमा पर स्थित लेहेंदे खोला में सोमवार रात आई बाढ़ और भूस्खलन में लापता हुए 25 लोगों में से 7 लोगों के शव मिले हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार अभी भी 18 लोग लापता है। बाढ़ में फंसे 55 लोगों को बचाया जा चुका है। संपर्क विहीन लोगों की खोज के लिए नेपाली सेना की धादिंग स्थित 6 नंबर बटालियन से गलछी होते हुए विभिन्न 70 स्थानों पर 294 जवान तथा रसुआ स्थित श्रीनाथ बटालियन से अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है, जैसा कि सैन्य जनसंपर्क निर्देशनालय ने बताया है। रसुआ के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी ने बताया कि बाढ़ के कारण 23 मालवाहक कंटेनर, 6 मालवाहक ट्रक और 35 नई इलेक्ट्रिकल वाहनों सहित कुल 64 वस्तुएं बह गई हैं। बाढ़ के कारण डैम साइट बह जाने से 111 मेगावाट क्षमता वाले रसुआगढ़ी जलविद्युत केंद्र का उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल चीन सीमा पर स्थित लेहेंदे खोला और भोटेकोसी नदी में आई बाढ़ से हुई जानमाल की क्षति का जायजा लेने के लिए स्थल का दौरा किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण रसुआ के लेहेंदे खोला के साथ साथ भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ओली ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि बचाव कार्य में सरकार की तरफ से कोई कमी न रहे, इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य में जुटने के लिए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। सभापति देउवा ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से रसुआ की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से हुई क्षति पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए बचाव और राहत कार्य में सक्रिय होने का आह्वान किया। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड भोटेकोशी नदी में आज सुबह आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव और राहत कार्य को प्रभावी बनाने का अनुरोध किया। आज सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने नेपाल चीन को जोड़ने वाले मित्रता पुल सहित कई महत्वपूर्ण संरचनाओं को हुई गंभीर क्षति का उल्लेख करते हुए बाढ़ से हुए नुकसान पर दुख जताया। अध्यक्ष प्रचंड ने पार्टी के सभी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बचाव और राहत कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाने का निर्देश भी दिया। आज सुबह तिब्बत क्षेत्र के मुंह से होकर रसुआगढ़ी नाका के रास्ते नेपाल में प्रवेश करने वाली भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ लोग लापता हो गए हैं। साथ ही उस क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है, इसलिए बाढ़ और भूस्खलन के खतरे से बचने के लिए संबंधित सभी पक्षों से अतिरिक्त सतर्क बरतने का आग्रह किया गया है। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित श्रम संसार पोर्टल ने रोजगारदाताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच मध्यस्थता का काम किया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों के मौखिक प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री भंडारी ने कहा कि देश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की पहचान कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने में इस पोर्टल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। सरकार ने विदेश से रोजगार समाप्त होकर लौटे लोगों द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किए गए कार्यों का सम्मान किया है, ये जानकारी मंत्री भंडारी ने बैठक को दी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से रक्षा मंत्री मानवीर राय ने संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक पर राष्ट्रीय सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सामान्य चर्चा हुई। इससे पहले बैठक में सांसदों ने रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में कल रात आई बाढ़ में फंसे लोगों के बचाव और लापता व्यक्तियों की खोज कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुराज पंत ने कहा कि सरकारी और सामुदायिक विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारना आवश्यक है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में उठाए गए प्रश्नों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री पंत ने कहा कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों का सरकारीकरण नहीं किया जा सकता और छात्रों को सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता को निजी स्कूलों के समान या उससे बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा। मंत्री पंत ने कहा कि बोर्डिंग स्कूलों में उपलब्ध शिक्षा जितनी या उससे बेहतर शिक्षा सामुदायिक विद्यालयों में ही उपलब्ध कराने के लिए सरकार सभी आवश्यक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में मॉनसून जनित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, राहत और बचाव कार्यों में सरकार को जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया गया। इसी तरह रसुआ में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की त्वरित खोजबीन, बचाव और राहत कार्य को गति देने की मांग की गई। किसानों को समय पर उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवों द्वारा फसलों को नुकसान की भरपाई करने, मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के लिए बाड़ लगाने और डॉक्टरों के आंदोलन से प्रभावित आम जनता के लिए संवेदनशीलता दिखाने की अपील की गई। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आषाढ़ 27 गते शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित सत्ता साझेदार प्रमुख दो दलों के शीर्ष नेताओं के बीच आज विचार विमर्श हुआ है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई बैठक में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमंत्री रमेश लेखक, नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु प्रसाद रिमाल सहभागी थे। संविधान संशोधन के विषय को सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए नेपाली कांग्रेस कार्यदल गठन करने की तैयारी में है। कार्यदल के द्वारा संविधान निर्माण में सहकार्य करने वाले राजनीतिक दलों, संविधान निर्माण में योगदान करने वाले विज्ञों, विशेषज्ञों और सरकार वाले नागरिक समाज के साथ संवाद किए जाने का निर्णय कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की इसी आषाढ़ 16 गते से शुरू होकर सोमवार को संपन्न हुई बैठक ने ये निर्णय किया है। ये जानकारी कांग्रेस मुख्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल ने दी। काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 6 बौद्ध से स्रोत का खुलासा न हो सके करीब 1.5 करोड़ रुपए सहित एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। बौद्ध नयाबस्ती स्थित एक घर में किराए पर रह रहे 40 वर्षीय चीनी नागरिक वांग जियांग को 1.44 करोड़ रुपए के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये जानकारी जिला प्रहरी परिसर काठमांडू ने दी। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 16 के कपिलेश्वर बाजार टोल स्थित भैया पोखरी में डूबने से दो बहनों की मौत हो गई है। जिला प्रहरी कार्यालय के अनुसार मृतकों की पहचान 4 वर्षीय आरोही कुमारी राउत और 3 वर्षीय मैथिली कुमारी राउत के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नहाने के दौरान दोनों बच्चियों का पोखरी में डूबने से मृत्यु हुई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय राज्य बिहार के पूर्णिया जिले के टेटा गावा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की डायन बताकर हत्या कर दी गई है। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक मृतकों में बाबूलाल उराव और उनकी पत्नी समेत परिवार के 5 सदस्य शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये घटना रविवार 6 जुलाई की रात हुई। पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा कि मामले में मुख्य अभियुक्त समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रसुआगढ़ी क्षेत्र में बीती रात आई बाढ़ में लापता हुए लोगों में से मिले 7 लोगों के शव, 55 का किया गया उद्धार। बाढ़ से मितेरी पुल बहने से रसुआ नाका से टूटा नेपाल चीन सड़क संपर्क। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया गया स्थलगत अवलोकन। बाढ़ और भूस्खलन में फंसे लोगों का उद्धार और राहत को प्रभावी बनाने की ओर सांसदों ने कराया सरकार का ध्यानाकर्षण। और भारतीय राज्य बिहार के पूर्णिया जिले के टेटगांवा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई हत्या। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।